रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में जहरा जैदी और साथियों का सलाम पहुंचे। श्रोता, आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों की तिलावत और उनके अनुवाद से करेंगे। आज आप सूरह आले इमरान की 60वीं से लेकर 63वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं स्वर्गीय मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी।
بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن
अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे पैगंबर, सत्य वही है जो आपके पालनहार की ओर से है, अतः संदेह करने वालों में से न हो जाइएगा। तो हे पैगंबर, जो कोई भी ईश्वरीय संदेश वही द्वारा आपके पास आने वाले ज्ञान के पश्चात आपसे ईसा मसीह के बारे में बहस और विवाद करे, तो उसे कह दीजिए कि हम अपने पुत्रों को लाएं और तुम अपने पुत्रों को, हम अपनी स्त्रियों को लाएं और तुम अपनी स्त्रियों को लाओ, हम अपने आत्मीय लोगों को और तुम अपने आत्मीय लोगों को लाओ, तो फिर हम ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करें और एक दूसरे को अभिशाप दें। तथा झूठ बोलने वालों के लिए ईश्वरीय लानत अर्थात अभिशाप निर्धारित करें। निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है, और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें, तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। دوستوں آج گروار ہے، شہری ورما کی 30، ربیع الاول کی 5 اور ستمبر کی 21 تاریخ۔ ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ وشو سماچار سنیں گے، اس کے اوپرانت راجنیتک چرچا کا دینی کاریکرم پرسارت کیا جائے گا۔ راجنیتک چرچا کے اوپرانت آپ سنیں گے کاریکرم آج کی بات، اور سبا کا انتم کاریکرم ہوگا سفل مہیلائیں۔ تو دوستوں یہ تو تھی ہمارے آج کے کاریکرموں کی روپ ریکھا، اور ابھی آپ کچھ کچھوں میں ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیں گے۔ اب آپ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ نیویارک میں ایران کی زبردست کوٹنیتی، یہودی دھرم گروؤں سے راشٹرپتی کی ملاقات۔ ایران اور بحرین کے ودیش منتریوں کے بیچ ملاقات، اہم مدوں پر چرچا۔ سعودی عرب اور سیریا نکٹ بھوش میں راجدوتوں کا آدان پردان کر سکتے ہیں۔ بھارت میں جاتیگت بھید بھاؤ کا مدعا پھر گرمایا، اس بار کیرل کے منتری ہوئے شکار۔ اور اب آپ وستار سے اختر عباس سے سماچار سنیے۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے نیویارک میں سنیکت راشٹر سنگھ کی مہا سبھا کے 78ویں سمیلن کے اتر زائنی ویرودی یہودی دھرم گروؤں سے ملاقات کی۔ ایرانی راشٹرپتی نے بدھوار کو نیتو رئی کرتا دھارمک سموہ کے ربیوں سے ملاقات کی جو زائنی واد کا ورودھ کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں راشٹرپتی رئیسی نے کہا کہ زائونی یہودی دھرم کی چھوی خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ماننا ہے کہ زائونی واد اور یہودی دھرم میں انتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہودی دھرم اور اس کی دھارمک کتاب تورات سے کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایران میں یہودی اپنے دھرم کے مطابق جیون ویتیت کرنے کے لیے سوتنتر ہیں، ہاں ہمیں زائونی واد سے سمسیا ہے۔ ایرانی راشٹرپتی کا کہنا تھا کہ اسلامی گڑتنتر ایران لوگوں کے دمن کا ورودھ کرتا ہے، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے انویائی دوارا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تکفیری آتنکوادی گٹ داعش کو مسلمان نہیں مانتے۔ داعش نے جو ظلم کیے ہیں ان کا سمرتھن کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ اسلامی گڑتنتر ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سنیکت راشٹر سنگھ کی مہا سبھا میں بھاگ لینے کے بعد آج تہران لوٹ آئے۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی سنیکت راشٹر سنگھ کی مہا سبھا کے 78ویں سطر میں بھاگ لینے اور سطر کو سمبودھت کرنے کے بعد سودیش پہنچ گئے۔ اپنی نیویارک یاترا کے دوران راشٹرپتی رئیسی نے آسمانی دھرموں کے وبھن نیتاؤں، امریکی ودیشی نیتی تھنک ٹینک، میڈیا پربندھکوں اور امریکہ میں رہنے والے ایرانی ناگرکوں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ سنیکت راشٹر سنگھ کی بیٹھک میں اپنی بھاگیداری کے دوران ایران کے راشٹرپتی نے قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، سری لنکا اور الجیریا کے راشٹرپتیوں تتھا جاپان، ملیشیا، عراق اور پاکستان کے پردھان منتریوں اور سنیکت راشٹر سنگھ کے مہا سچیو سے بھی ملاقاتیں کی، اور ان نیتاؤں کے ساتھ وبھن مدوں اور آپسی ہت کے وشے پر چرچا کی۔ ایران نے تہران کے خلاف امریکہ اور فارس کی کھاڑی سہیوگ پرشد جی سی سی کے کھوکھلے دعووں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ایسے دعوے کیول ان شکتیوں کے ہتوں کو پورا کرتے ہیں جو اس شیتر کا برا چاہتی ہیں۔ نیویارک میں بدھوار کو جی سی سی کے ودیش منتریوں، امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن اور جی سی سی مہا سچیو جاسم البدیوی کی ایک بیٹھک کے بعد ایران کے خلاف ایک سنیکت بیان جاری کیا گیا۔ ایرانی ودیش منترالے کے پروکتا ناصر کنانی نے اس بیان کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ ورتمان استھتی میں کھوکھلے دعووں اور نرادھار آروپوں سے شیتریہ سرکاروں اور لوگوں کو کوئی لابھ نہیں پہنچے گا۔ کنانی کا کہنا تھا کہ اسلامی گڑتنتر ایران کا ماننا ہے کہ شیتریہ سمسیاؤں کو باہری شکتیوں کے ہستکشیپ کے بنا شیتریہ دیشوں کے بیچ آپسی بات چیت، سہیوگ اور تال میل دوارا ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی ودیش منتری نے اپنے بحرینی سمکش سے ملاقات کی ہے جو دونوں دیشوں کے سمبندھ خراب ہونے کے بعد پہلی اونچ استریہ بیٹھک ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے انوسار ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے نیو یارک میں آپریشن ڈائیلاگ ٹو ایشیا کے سطر کے دوران بحرین کے ودیش منتری عبداللطیف راشد الزیانی سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق اے سی ڈی بیٹھک میں اس منچ کی ادھیشتا 2 سال کے لیے بحرین سے ایران استھانانترت کر دی گئی ہے اور صدر دیشوں کے ودیش منتریوں کی اگلی بیٹھک 2024 میں تہران میں ہوگی۔ یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ان کا دیش اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں کو سامان्य بنانے کے کافی نزدیک ہے۔ بدھوار کو فاکس نیوز کے ساتھ ایک ساکشاتکار میں سعودی کراؤن پرنس نے کہا کہ ہر دن ہم قریب آتے جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے دیش میں راشٹرپتی چناؤ سے پہلے سعودی عرب پر اسرائیل کو مانیتا دینے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ سمبندھوں کو سامان्य بنانے کے لیے امریکہ کے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھیں جنہیں کچھ حد تک امریکہ نے سویکار کر لیا ہے۔ سرکشا کی گارنٹی اور شانتی پورن پرماڑو کاریکرم کے سنچالن جیسی شرطوں کا مکھ روپ سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ سعودی کراؤن پرنس نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کا مدعا ریاض کے لیے بہت مہتوپورن ہے، ہم اس مدعے کا سمادھان چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ایک استھان پر پہنچے گا، اس سے فلسطینیوں کا جیون آسان ہو جائے گا۔ ریاض میں سعودی عرب اور یمنی پرتنیدھی منڈلوں کی بیٹھک کے بعد یمن کی اچ راجنیتک پریشد کے پرمکھ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سنا ریاض سعودی عرب کی چنتاؤں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے انوسار یمن کی اچ راجنیتک پریشد کے پرمکھ مہدی المشاط نے 21 ستمبر کی کرانتی کی نوی ورشگاٹھ کے اوسر پر اپنے بھاشن میں کہا کہ سنا سرکار سعودی عرب کی چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی تیار ہے جتنا سعودی عرب ہماری چنتاؤں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ مہدی المشاط نے کہا کہ یمنی پرتنیدھی منڈل کی ریاض یاترا سکاراتمک رہی اور سعودی عرب نے ہمارے پرتنیدھی منڈل کے مادھیم سے جو سندیش اور گارنٹی دی ہے ہم اسے سکاراتمک مانتے ہیں اور اس کا سواگت کرتے ہیں، لیکن اسے جلدی سے لاگو کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مدھیستتا کے پریاسوں کے لیے عمان کو بھی دھنیواد دیا۔ سعودی عرب اور سیریا نکٹ بھوش میں راجدوتوں کا آدان پردان کر سکتے ہیں۔ جانکار سوتروں کا کہنا ہے کہ دمشق اور ریاض میں سعودی عرب اور سیریا کے دوتاواس نکٹ بھوش میں کھلنے کی سمبھاونا ہے اور سمبندھوں کی بحالی اور دوپکشیہ سمجھوتوں کی سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں۔ فارس نیوز کے انوسار جانکار سوتروں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور سیریا کے بیچ راجنیکوں کے آدان پردان اور دوتاواس کھولنے کا مدعا سلجھا لیا گیا ہے اور پرستاوت راجنیکوں کے نام کے ساتھ سمجھوتے سے سمبندھت سبھی قدم اٹھا لیے گئے ہیں۔ دمشق اور ریاض نے لگ بھگ 11 ورشوں تک راجنیک سمبندھوں کو توڑنے کے بعد اپنے دوتاوازوں کو پھر سے کھولنے کے لیے پچھلے مارچ میں سہمتی ویکت کی تھی۔ لبنانی اخبار الاخبار نے یہ خبر دی ہے۔ چین کے راشٹرپتی شی جن پنگ کے نمنترن پر سیریا کے راشٹرپتی بشار الاسد چین پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا بھویہ سواگت کیا گیا ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق سیریا کے راشٹرپتی بشار الاسد آدھیکارک دورے پر چین پہنچے ہیں۔ اس یاترا کے لیے انہیں چینی راشٹرپتی شی جن پنگ نے آمنترت کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیریا کے راشٹرپتی بشار الاسد اپنی یاترا کے دوران چینی راشٹرپتی شی جن پنگ اور ان شیرش چینی ادھیکاریوں سے ملاقات کریں گے۔ سیریا کی سرکاری سماچار ایجنسی سانا کے مطابق سیریائی راشٹرپتی کے ساتھ ایک اچ استریہ راجنیتک اور آرتھک پرتندھی منڈل بھی چین گیا ہے، جس میں سیریا کے ودیش منتری فیصل المقداد، ارتھویوستھا اور ویاپار منتری محمد سمیر الخلیل، راشٹرپتی معاملوں کے منتری منظور اعظم، راشٹرپتی کی وشیش سلاحکار بسینہ شابان، اپ ودیش منتری ایمن سوسان اور ان راجنیتک اور آرتھک ہستیاں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے ایک سینے اڈے سے ایک میرکاوا ٹینک کے چوری ہونے کی خبر سے اسرائیلی سینا میں ہڑکمپ مچ گیا ہے۔ عرب 48 نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بدھوار کی شام زائنی پولیس نے اویدھ ادھیکرت علاقے میں الیاقیم ہائی وے کے نکٹ ایک میرکاوا ٹینک کے چوری ہونے کی گھوشنا کی۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ٹینک چوری ہونے کی گھٹنا کی جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اس سمبندھ میں تبریا اور حیفا میں رہنے والے دو سندگدھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ دونوں سندگدھوں سے پوچھ تاچھ کی جا رہی، لیکن گروار کو انتم سماچار ملنے تک سندگدھوں سے کوئی مہتوپورن جانکاری پراپت نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسے رکشا منترالے نے پرشکشن کیمپ سے ایک ٹینک کے چوری ہونے کی سوچنا دی ہے، جس کے بعد اس نے گھٹنا کی جانچ شروع کر دی ہے۔ پولیس نے چوری کیا گیا ٹینک کو حیفا کے کباڑی علاقے سے ضبط کر لیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا میں مہیلا آرکشن بل 2 کے مقابلے میں 454 متوں سے پاس ہو گیا۔ اس ودھیک میں سنسد اور ودھان سبھا میں مہیلاؤں کے لیے 33% آرکشن دینے کا پراودھان کیا گیا ہے۔ اس بل میں راجیہ سبھا میں پاس ہونے کے بعد جنگننا اور نئے پریسیمن کے بعد ہی اسے لاگو کیا جائے گا۔ پریسیمن کی پرکریا پوری ہونے اور لوک سبھا تتھا راجیہ ودھان سبھاؤں کے بھنگ ہونے کے بعد مہیلا آرکشن پربھاوی ہو سکتا ہے۔ ودھیک میں کہا گیا ہے کہ لوک سبھا، راجیہ سبھا کی ودھان سبھاؤں اور راشٹریہ راجدھانی کھیتر دلی کی ودھان سبھا میں 1/3 سیٹیں مہیلاؤں کے لیے آرکشت ہوں گی۔ اس پرکار لوک سبھا کی 543 سیٹوں میں سے 181 سیٹیں مہیلاؤں کے لیے آرکشت ہوں گی۔ کیرل کے دیو سوم اور ایس ٹی کلیان منتری کے رادھا کرشنن نے بتایا ہے کہ کنور میں ایک مندر سماروہ میں بھاگ لینے کے دوران انہیں جاتیگت بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد راجنیتاؤں نے اس گھٹنا کی نندا کی ہے۔ انوسوچت جاتی ایس سی سمودائے سے آنے والے مارکسوادی بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے ورشٹھ نیتا رادھا کرشنن 26 جنوری کو پیانور شیو مندر کے ناندا پنتھل کے ادگھاٹن کے اوسر پر ایک دیپ پرجولن سماروہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ منتری نے آروپ لگایا کہ مالابار دیو سوم بورڈ کے سوامتو والے مندر کے مکھیہ پجاری انہیں دیپ سونپنے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے اسے سہایک پجاری کو دے دیا، جس نے اسے فرش پر رکھ دیا تھا۔ دا ہندو کی رپورٹ کے انوسار رادھا کرشنن نے کہا کہ انہیں پجاریوں اور مندر کے ادھیکاریوں دوارا اپمانت محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چندرما پر چندریان بھیجا ہے، لیکن ہمارا دماغ ابھی بھی رونی وادی ہے۔ ہمارے سماج میں جاتی اور دھرم کے نام پر بھید بھاؤ ابھی بھی موجود ہے۔ گجرات کی بھارتی جنتا پارٹی سرکار پر وپکشی دل کانگریس اور عام آدمی پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ اس نے نرمدا ندی پر سردار سروور باندھ کے پانی کو بھاری ماترا میں 2 دنوں کے لیے روک رکھا اور پھر 17 ستمبر کو ایک بار پھر سارا پانی چھوڑ دیا، جس سے 5 ضلعوں میں باڑ آ گئی۔ وشیش روپ سے بھروچ ضلع اس سے سب سے زیادہ پربھاوت ہوا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے انتراشٹری سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
شروط راجنیتک چرچا کے دینک کاریہ میں محمد مہندی کا سلام سویکار کیجیے۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے آخرکار اسرائیلی پردھان منتری کو وائٹ ہاؤس میں آمنترت ہی कर लिया। नेतन्याहू को लंबे समय से बाइडेन के निमंत्रण की प्रतीक्षा थी, जिनके बीच कई मुद्दों को लेकर गंभीर मतभेद हैं, लेकिन अब ये मिलकर सऊदी अरब के साथ सानी शासन के संबंधों के सामान्यकरण में लगे हुए हैं। पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं भेजेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना था कि हम पोलैंड की सेना को बहुत ही कम समय के भीतर यूरोप की एक शक्तिशाली सेना के रूप में पेश करना चाहते हैं। यूक्रेन के विरुद्ध पोलैंड की नई रणनीति दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव को दर्शाती है। यूक्रेन युद्ध में अब तक पोलैंड ने हथियार देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरकार इसराइली प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में आमंत्रित ही कर लिया। नेतन्याहू को लंबे समय से बाइडेन के निमंत्रण की प्रतीक्षा थी, जिनके बीच कई मुद्दों को लेकर गंभीर मतभेद हैं, लेकिन अब ये मिलकर सऊदी अरब के साथ सानी शासन के संबंधों के सामान्यकरण में लगे हुए हैं। समीक्षा पेश करें साथ ही मिसम अब्बास।
अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरकार इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में आमंत्रित कर ही लिया। नेतन्याहू को लंबे समय से बाइडेन के निमंत्रण का इंतजार था, जिनके बीच कई मुद्दों को लेकर गहरे मतभेद हैं, लेकिन अब ये मिलकर सऊदी अरब के साथ ज़ायोनी शासन के संबंधों के सामान्यकरण में लगे हुए हैं। बाइडेन ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर नेतन्याहू के साथ मुलाकात में कहा, आज हम कुछ कठिन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखना है जो हमारी दोस्ती के केंद्र में है। इसी तरह से फिलिस्तीनी मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि दो देशों के समाधान के मार्ग को भी हम संरक्षित करना चाहते हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। बाइडेन ने यह दावा ऐसी स्थिति में किया है कि जब नेतन्याहू ने अति दक्षिणपंथी ज़ायोनी दलों के साथ गठबंधन करके इसराइल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं, जिसके खिलाफ वहां पिछले कई महीनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसके अलावा अमरीकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर अपना पुराना राग अलापा है और ये खोखला दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और इसकी पुष्टि IAEA अपनी कई रिपोर्टों में कर चुकी है। वहीं बाइडेन ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर एक बार फिर उन अरब और मुस्लिम देशों को झांसा देने की कोशिश की है जो दो देशों के समाधान में विश्वास रखते हैं। हालांकि ज़ायोनी शासन और खासतौर पर नेतन्याहू सरकार में शामिल ज़ायोनी गुट इसके कट्टर विरोधी हैं। वहीं फिलिस्तीन के हमास जैसे शक्तिशाली प्रतिरोधी संगठनों को यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि ज़ायोनी शासन के अतीत पर एक नज़र डालने से स्पष्ट हो जाता है कि उस पर रत्ती बराबर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। वास्तव में अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा एजेंडा सऊदी अरब और ज़ायोनी शासन के बीच संबंधों को सामान्य बनाना है। ट्रंप प्रशासन ने कई अरब देशों पर दबाव बनाकर उन्हें ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य करने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन वाशिंगटन को लगता है कि जब तक सऊदी अरब को इसके लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक ज़ायोनी शासन को इस क्षेत्र में कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। बैठक में बाइडेन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, हम आपके नेतृत्व में इसराइल और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते तक पहुँच सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरब भी UAE और बहरीन के रास्ते पर चलते हुए इसराइल को मान्यता प्रदान करेगा, जिसे फिलिस्तीनियों ने गद्दारी और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं भेजेंगे। पोलैंड के प्रधानमंत्री का कहना था कि हम पोलैंड की सेना को बहुत ही कम समय के भीतर यूरोप की एक शक्तिशाली सेना के रूप में पेश करना चाहते हैं। यूक्रेन के विरुद्ध पोलैंड की नई रणनीति दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव को दर्शाती है। यूक्रेन युद्ध में अब तक पोलैंड ने हथियार देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समीक्षा पेश करें साथ ही कायम रिजवी।
पोलैंड ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं भेजेगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं भेजेंगे। मोंटोज ने बताया कि अब हम पोलैंड की सेना के आधुनिकीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उनका ये भी कहना था कि हम पोलैंड की सेना को बहुत ही कम समय के भीतर यूरोप की एक शक्तिशाली थल सेना के रूप में पेश करना चाहते हैं। यूक्रेन के विरुद्ध पोलैंड की नई रणनीति दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव को दर्शाती है। यूक्रेन युद्ध में अब तक पोलैंड ने हथियार देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम की ओर से यूक्रेन के लिए हथियार और सहायता भेजने का प्रमुख मार्ग भी पोलैंड ही रहा है। इस बारे में सन 2023 की जनवरी के अंत में पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया था कि यूक्रेन युद्ध के आरंभ से लेकर अब तक ये देश यूक्रेन को 3 अरब यूरो की सहायता कर चुका है। पोलैंड और यूक्रेन के बीच मतभेदों का मुख्य कारण कीव की ओर से यूरोप को निर्यात किया जाने वाला गल्ला है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की थी कि यूक्रेन के आयात को रुकवाने के कारण उसने विश्व व्यापार संगठन में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया की शिकायत की है। इसी बीच विश्व व्यापार संगठन ने मंगलवार को बताया है कि यूक्रेन की ओर से इस संगठन के पास शिकायत आई है कि वो इस संदर्भ में पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया के साथ बात करे। उधर यूरोपीय संघ में पोलैंड के प्रतिनिधि ने बुधवार की रात को कहा है कि इस शिकायत से यदि पोलैंड का आम जनमत विरोधी है तो हम यूक्रेन की सहायता बंद भी कर सकते हैं। तीनों देशों पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया ने यूरोपीय संघ के फैसले का विरोध करते हुए यूक्रेन के गल्ले के आयात को अस्थायी रूप से रोकने के फैसले को बढ़ा दिया है। ये वो काम है जो संभवतः यूरोपीय संघ के अधिकारियों को नाराज कर सकता है। इस संघ ने 15 सितंबर को घोषणा की थी कि वो कई पूर्वी यूरोपीय देशों में यूक्रेनी अनाज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अस्थायी रूप से निलंबित करने की योजना बना रहा है। इसी वर्ष मई के महीने में यूरोपीय संघ ने बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया में गेहूं, मक्का तथा सूरजमुखी के बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कानून को मंजूरी दे दी थी ताकि सस्ते यूक्रेनी अनाज से इन देशों के किसानों को नुकसान होने के जोखिम से बचाया जा सके। विशेष बात यह है कि यूक्रेन की गणना विश्व के प्रमुख अनाज आपूर्तिकर्ताओं में होती है। जब से काला सागर अनाज समझौता रद्द हुआ है उस समय से यूक्रेन अपने अनाज के निर्यात के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर है। पोलैंड के हालिया फैसले के बाद इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि रूस के विरुद्ध यूक्रेन की असीमित सहायता को रोकने के लिए ये उसकी भूमिका बन सकता है।
तो श्रोताओ, इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारा ये कार्यक्रम आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमें आशा है कि हमारा आज का प्रसारण भी आपको अवश्य पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा पता नोट कर लें, ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir, जबकि ताज़ा समाचारों से अवगत होने के लिए हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/ HIV और व्हाट्स ऐप पर हमसे संपर्क के लिए नंबर है 0098-9035-06-5492। तो श्रोताओ अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात
दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। आज के कार्यक्रम में हम सनातन धर्म की हकीकत और इस पर होने वाले हंगामों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। भारत के तमिलनाडु राज्य के युवा और खेल मंत्री उदय निधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद से राजनीति के मैदान में घमासान मचा हुआ है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं और उनको ध्वस्त करने के लिए तरह तरह की दलीलें भी दी जा रही हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सचमुच में सनातन धर्म का कोई आदि अंत रहा है या नहीं, और अगर है तो कब और कहां जन्मा, और भारत के हिंदुत्ववादियों को आज ये इतना प्रिय क्यों लगने लगा, और सनातन में मौजूद जाति व्यवस्था पर वे बात क्यों नहीं करते, उस पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं। आज के कार्यक्रम में हम सनातन धर्म के इतिहास पर विशेषज्ञों की राय रखेंगे और नतीजा आप पर छोड़ देंगे। जैसे ही स्टालिन ने सनातन धर्म का शोषा छोड़ा, भारत में इस मुद्दे को लेकर अलग अलग ज्ञान आने लगे। लेकिन जब मैंने भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रोफेसर राम पुनियानी से सनातन धर्म की सच्चाई के बारे में पूछा और ये जानने की कोशिश की कि सनातन धर्म कोई धर्म है, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ और कहां से हुआ, तो उनका कहना था,
देखिए ये जहां तक सनातन शब्द का सवाल है, सनातन धर्म के रूप में इतिहास में इसका कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। सबसे पहले इसका एक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में आता है जिसका नाम है सुतनिपद। उसमें एक सुभाषित में सत्य को सनातन कहा गया है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो वेदों में ये शब्द कई बार आता है और वो धर्मन के रूप में आता है। धर्मन जो धृति इस मूल शब्द से बना है, यानी जिसको धारण करके आप समाज में आपको जीना चाहिए। मुख्य रूप से महाभारत में उसका उल्लेख करीब 157 बार आता है। वेदों में जो उल्लेख है वो धर्मन के रूप में है। धर्मन से उनका अर्थ है वो सनातन मूल्य जो सदा चलते रहना चाहिए। इस एक एब्स्ट्रैक्ट रूप में है, उसका बहुत कुछ एक निश्चित स्वरूप में रूप में वेदों में नहीं आता। वो आता है बाद में, विष्णु पुराण में आता है, भागवत में आता है। भागवत में कई बार इसका उल्लेख है, गीता में इसका उल्लेख 2 बार है। और मैं बड़ी मजेदार बात मैंने पढ़ते पढ़ते मुझे पता चली, महाभारत में जो इस सनातन का उपयोग होता है वो उसके 2 इंसिडेंट बड़े मजेदार है। एक तो एक बार पांडु कुंती को कहते हैं कि पहले के समय सनातन मूल्य थे कि एक स्त्री कई पतियों से शादी कर सकती थी, पर अभी के समय में, अभी बदलते समय में वो संभव नहीं है। फिर द्रौपदी के जब चीरहरण होता रहता है तब वो दुर्योधन के कहती है कि आप जो कर रहे हो ये सनातन के खिलाफ। खैर ये एक धारणाओं के रूप में इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है शाश्वत और सदा चलने वाले मूल्यों में, उसी के साथ साथ ये भी जोड़ देना चाहिए कि जहाँ एक तरफ इस प्रकार के सनातन का उल्लेख है, दूसरी तरफ जो वर्ण व्यवस्था है उसका भी उल्लेख है कि ये भी एक शाश्वत चलने वाली चीज है। ये 2 चीजों का उल्लेख मुख्य रूप से पुराने समय में आता है जो शाब्दिक अर्थ के रूप में है।
जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर आर महालक्ष्मी कहती हैं कि सनातन धर्म के बारे में आज बात करने वालों को इसकी हकीकत के बारे में शायद ही पता हो। वो सनातन के इतिहास पर रोशनी डालते हुए कहती हैं,
जो सनातन धर्म है ये शब्द जो है हमें पहले बौद्ध स्रोतों में इसका विवरण मिलता है। इससे पहले हमको वेदों में धर्म शब्द मिलता है, वो भी धर्मन जो उसका रूप है ऐसे करके मिलता है, और उसका धातु देखते हैं तो वो ध्री से आता है जिसका मतलब है जिसको संभालते हैं, जिसका भार लेते हैं। तो जो सनातन के साथ जुड़ा हुआ ये शब्द धर्म सनातन धर्म के रूप में हमको पहले बौद्ध स्रोतों में मिलता है और वहां पर इसको दो दो मेजर टेक्स्ट में हमको ये मिलता है. एक जो बहुत ही प्राचीन एक लेख एक कलेक्शन है जिसको सुत निपात कहते हैं और उसमें महावग्ग जो ग्रेट चैप्टर है उसमें हमको ये मिलता है. लेकिन माना जाता है कि ये शायद गौतम बुद्ध ने इसको पेश किया. ये सेइंग्स के रूप में है और ये एक सुभाषित है एक्चुअली जो गौतम बुद्ध माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है. तो वहां पर उन्होंने जो जो हमें मिलता है ये सनातन धर्म जो है उसको सत्य के साथ जोड़ते हैं. ये बोलते हैं कि सत्य जो है वो कभी मिटता नहीं है. ये सनातन धर्म है. ये ऐसा एक रूप वहां पर मिलता है. और इसके अलावा हमको जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें जो सबसे ज्यादा और शायद सबसे डाइवर्स जो मीनिंग्स के साथ ये जो कंपाउंड है सनातन धर्म हमको महाभारत में मिलता है. इसका एक रिसर्चर ने स्टडी करके बताया है ये शब्द का ही इस कंपाउंड का कि जब हम सारे स्रोतों को देखेंगे तो जो संस्कृत में लिखे गए तो महाभारत में 157 बार सनातन धर्म शब्द का यूज किया है और इसके बाद के जो नेक्स्ट है स्रोत उसमें 10 या 8 या 7 बार ही विवरण है.
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात. इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर. कार्यक्रम आज की बात.
वेद पुराण और आख्यानों के विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक का कहना है कि विज्ञान वाले सच और विश्वास वाले सच में बहुत अंतर होता है क्योंकि विश्वास में आप साक्ष्य नहीं मांगते लेकिन विज्ञान में आप सबूत और साक्ष्य मांगते हैं.
मेरे हिसाब से विश्वास वाला सच और विज्ञान वाला सच में बहुत अंतर होता है. There's a great difference between matters of faith and matters of science. In matters of faith, आप प्रमाण नहीं पूछते, evidence नहीं पूछते, आप गुरु के वाक्य को ही मानते हो. यहाँ पे शंका नहीं होती, doubt नहीं होता. लेकिन विज्ञान में शंका होती है, गुरु के वाक्य को आप accept नहीं करते हो और आप प्रमाण के ऊपर बहुत value देते हो. So is सनातन धर्म the same as Hinduism? अभी सनातन का मतलब है which is eternal, timeless, जो हमेशा जिसका अंत नहीं होता, जो अनादिकाल और अनंत काल से रहता है. इट इज इमॉर्टल, अमर है, खत्म नहीं होता, खंडित नहीं होता, इसे सनातन कहते हैं. धर्म आजकल की भाषा में हम यूज करते हैं रिलीजन के लिए, हमारे विश्वास वाले सच के लिए. अभी हिंदुइज्म शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वेरी लूजली, लेकिन पहले जमाने में हिंदुइज्म का मतलब होता था जो अल हिंद का संस्कृति था. अभी अल हिंद इज अ वर्ड विच वॉज यूज बाय पर्शियंस, जो फारसी लोग थे, जो अरबी लोग थे, जो भारत आते थे, वो कहते थे कि ये अल हिंद है. हिंद शब्द सिंध से आता है, सिंध शब्द सिंधु से आता है. सिंधु इज द संस्कृत वर्ड फॉर रिवर, इट स्पेसिफिकली मीन्स द इंडस रिवर. तो जब अरबी लोग आते थे इंडिया में वो बोलते थे कि अच्छा ये जो नदी है सिंधु नदी है उस पार जो लोग रहते हैं उनकी संस्कृति बहुत अलग है, इसे हम हिंदू सभ्यता कहेंगे, हिंदू संस्कृति कहेंगे. धीरे धीरे करके लगभग 1000 साल पहले जब मुसलमान आने लगे भारत में तो भारत के जो राजा थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो संस्कृति है वो बहुत अलग है, ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं इनकी संस्कृति बहुत अलग है. तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म तुरुकु धर्म से अलग है। तो यानी कि उन्होंने कहा कि देखो हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बनाते हैं, देवताओं को नैवेद्य चढ़ाते हैं, लेकिन ये तुरुकु धर्म के लोग जो है वो मंदिर और देवताओं को नहीं मानते, उनका देवता निर्गुणी है, मूर्ति नहीं पूर्ति पूजा नहीं करते, वो मस्जिद बनाते हैं, तो ये हमसे अलग है। तो तुरुकु धर्म और हिंदू धर्म शब्द इस्तेमाल होने लगा 1000 साल पहले, एक टिपिकली हम बोलेंगे 1300 साल पहले, और धीरे धीरे करके हिंदू धर्म एक शब्द बन गया। भारत में जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, यहाँ पे कन्वर्जन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। आप जन्म से जो भी आपकी जाति है उसी में रहते हो, आप हर हर कौम का अलग देवता है, अलग भाषा है, अलग रीति रिवाज है, एंड वी हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इट। ये एक देववाद में एक यूनिफॉर्मिटी होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, भारतीयों को ये पसंद नहीं है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि सनातन धर्म क्या है, ये भारत का एक स्पेसिफिक संस्कृति है जहां पे हम बहुदेववाद मानते हैं एंड बेसिकली डाइवर्सिटी मानते हैं, यू नो, विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के देवताएं, रीति रिवाज, और जो समय के साथ बदलता भी रहता है, इसे हम प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ये बहुदेववाद है। किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं, आप आपका धर्म रखो, हम अपना धर्म रखते हैं, आप अपना प्रैक्टिस करो, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, तो इसे हम सनातन धर्म कह सकते हैं।
अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि जब वेदों में धर्मन शब्द का इस्तेमाल है, कुछ पुराणों और मनु स्मृति में भी इसका उल्लेख है, तो सनातन का जो उपयोग हो रहा है वो मूल्यों के रूप में हो रहा है या धर्म के रूप में हो रहा है? विचार सुनिए भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रोफेसर राम पुनियानी के।
इसको मैं दो रूप में कहना चाहूंगा। सनातन धर्म के रूप में इस प्रकार की कोई कल्पना नहीं थी। जो बात की गई थी वो सनातन मूल्यों की बात की गई थी, और बाद में चल के, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म एक अलग प्रकार का धर्म है जहाँ कोई पैगंबर नहीं है, एक पवित्र किताब नहीं है, एक प्रकार के आचार्य नहीं है, इसमें एक प्रकार की विविधता है। तो आज की कल्पना से हम उसमें जो डाल देते हैं उसको एक धर्म का स्वरूप दे देते हैं, पर इस प्रकार का एक संगठित धर्म है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, वो उस समय में नहीं है। ये एक्चुअली वास्तव में इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है, वास्तव में समाज में किस प्रकार से उद्भवित होता है, वो हम बाद में देखते हैं, खासतौर से 19वीं शताब्दी। अब 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि कुछ रूढ़िगत समाज चलता रहता है। हिंदू धर्म जिसको आज हम कहते हैं उसकी बहुत सारी परंपराएं हैं, नाथ तंत्र भक्ति शैव सिद्धांत ब्राह्मणवाद वगैरह बहुत सारी है, और इसमें कई सारी कुरीतियां भी आ गई हैं। तो उसमें दो महानुभाव जो 19वीं शताब्दी में आते हैं, एक राममोहन राय और दूसरा दयानंद सरस्वती। उस समय ये भी देख रहे थे कि भारत में मिशनरी भी आ रहे थे और वो किस प्रकार के समाज सुधार की बात कर रहे थे, उसका भी चैलेंज था, और इनको अपना धर्म भी बचाना था, धर्म उस सेंस में बचाना था। तो दोनों मुख्य रूप से कहते हैं कि जो वेदों के बाद की जो कुरीतियां इसमें आई हैं वो सनातन में नहीं आती, वो हमारे हिंदू धर्म में नहीं आती, सनातन हिंदू धर्म में नहीं आती है। अब उनका विरोध किसने किया? उनका विरोध जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि आप सनातन मूल्यों के बाहर जा रहे हैं। तो पहली बार हम देखते हैं कि सनातनी के नाम पे सुधारों का विरोध होता है, वो सुधार आर्य समाज के नाम पे हो या ब्रह्मो समाज के नाम।
दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों, कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर है रविश जैदी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, दुनिया में शायद ही बहुत ही कम लोग होंगे जिनका सपना हवा में उड़ने का ना रहा हो। जब हम बच्चे होते हैं और आसमान में परिंदों को उड़ता हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर भी यह इच्छा पैदा होती है कि काश हम भी इस तरह हवा में उड़ सकते। वहीं जब आसमान में हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखते हैं तो सोचते हैं कि काश हम भी इसमें बैठकर आसमान की सैर कर रहे होते। वैसे इंसान की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन सपने जरूर देखने चाहिए, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही उसे पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत से लोग कम उम्र में ही सपने देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी उम्र के साथ सपने भी टूटने या बदलने लगते हैं और जिंदगी जिस दिशा में ले जाए उस दिशा में जाने लगते हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को साकार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और आखिरकार उनके सपने उनकी कड़ी मेहनत से पूरे भी होते हैं।
आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान के आसमान में उड़ने वाला सपना आसानी से साकार हो सकता है। वहीं अगर किसी का पेशा ही जहाज चलाने का हो तो उसकी बात ही अलग है। वैसे पायलट का पेशा जहां जितना कठिन है वहीं उतना रोमांचक और अति संवेदनशील भी है, और जब रोमांचक संवेदनशीलता और कठिन काम की बात आती है तो उसे तुरंत पुरुषों से ही जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मानव समाज में हमेशा ये धारणा बनी हुई है कि कोई भी कठिन और रोमांचक काम केवल पुरुष ही अंजाम दे सकते हैं। जबकि समय के साथ ये सोच भी अब बदल चुकी है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बात की जाए हवाई जहाज के पायलटों की तो वर्तमान में विश्व भर में इस पेशे से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वहीं ईरानी महिलाएं देश की अलग अलग एयरलाइंसों में पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जहां दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर दुष्प्रचार करते रहते हैं, वहीं ईरान की महिलाओं ने सभी क्षेत्रों और खासकर पायलट के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज करके मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ प्रोपेगंडा करने वालों की जबान पर ताला लगा दिया है।
हाल ही में समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि मिराज एयरलाइंस के एयरबस A320 विमान को कैप्टन फहीमा अहमदी दस्तजर्दी और उनकी सह पायलट फातिमा ताहा मोहम्मदी ने तबरेज के शहीद मदनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ाया है। इस विमान की विशेषता यह थी कि इस उड़ान में सभी फ्लाइट अटेंडेंट महिलाएं थीं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस उड़ान को पूरी तरह से इस्लामी गणराज्य ईरान की प्रिय महिलाओं द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया गया था। महिलाओं द्वारा यात्री विमान की उड़ान विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम महिलाओं की क्षमता का उपयोग करने का एक उदाहरण है, जो समाज में महिलाओं की क्षमता पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। जैसा कि हमने बताया है कि इस विमान की पायलट फहीमा अहमदी दस्तजर्दी थी, तो हम उनके बारे में आपको और अधिक बताते हैं। फहीमा अहमदी बचपन से ही उड़ने का सपना देखती थी और बचपन में जब वह अपनी हाथ से बनी पतंगों को आसमान में उड़ाती थी तो वह खुद को आसमान में हल्के पंख वाले पक्षी के रूप में देखती थी। तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि एक दिन वह एक लोहे की चिड़िया से आकाश को जीतेगी और बादलों के दूसरी ओर से पृथ्वी को देखेगी।
फहीमा अहमदी दस्तजर्दी एक युवा महिला है जो हमेशा पक्षियों की तरह पंख रखना चाहती थी और अपने पंखों से उड़ना चाहती थी। वो अपनी पेंटिंगों में खुद को एक पतंग पकड़े और आकाश में उड़ती हुई दिखाती थीं। आखिरकार उनके सपने उन्हें उस दिशा में ले गए। सबसे पहले उन्होंने पैराग्लाइडिंग का अनुभव किया, साथ ही आगे के रास्ते को तय करने के लिए काफ़ी कठिन रास्तों से गुजरी। इस बीच धीरे धीरे खुद की सबसे पहले ईरान की एकमात्र फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर पहचान बनाई और फिर ईरान की एयरबस 320 की पायलट बनने में कामयाब हो गई। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया है और ये साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत और प्रयास का इस्तेमाल किया है कि जिस समाज में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का उड़यन में अच्छा स्थान नहीं है, वहां लैंगिक विचारों की परवाह किए बिना एक महिला के रूप में अपनी सभी योग्यताओं और कौशलों का इस्तेमाल किया ताकि दिखा सकें कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह एक कामयाब पायलट बन सकती हैं, वे भी विमान का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती हैं और आकाश में उड़ सकती हैं।
ईरान की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर अपनी पहली उड़ान के अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगी। वह अपनी तेहरान मशहद पहली उड़ान, जो कि एक आसमानी और निश्चित रूप से कठिन अनुभव था, के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि एक दिन पहले तक बहुत मुश्किल था। मैं कॉकपिट में फ्लाइट के मुख्य पायलट के बगल में बैठी थी। एक्साइटमेंट की वजह से मुझे न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। मेरे बगल में बैठे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ने कहा कि सीट पर बैठ जाओ और उड़ते हुए प्लेन का मजा लो, लेकिन मैं बहुत ही उत्साहित थी क्योंकि अगले दिन मुझे इस फ्लाइट को उड़ाना था। ये बहुत ही कठिन अनुभव था, साथ ही मैं अपने सपनों में खोई हुई थी और विमान के बाहर के नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करती जा रही थी। दस्तजर्दी कहती हैं कि यात्रियों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया उनका आश्चर्य है, जो मेरे लिए दिलचस्प है। इससे पहले जब मैं एक फ्लाइट इंजीनियर थी तो यात्रियों को मेरी उपस्थिति का ध्यान नहीं होता था, लेकिन चूंकि मैं एक सह पायलट बन गई थी और मुझे फ्लाइट की घोषणाओं के लिए अपना परिचय देना था, यात्रियों ने भी मुझे पहचान लिया।
फहमीदा अहमदी बताती हैं कि मेरी पहली उड़ान के समय अधिकांश यात्री आश्चर्यचकित थे और कुछ फ्लाइट के गंतव्य पर पहुंचते ही जल्दी से मेरी तरफ आए ताकि वे मुझे नज़दीक से देखें और मेरे काम को नज़दीक से देख पाएं। यहां तक कि कभी कभी जब कॉकपिट बाहर से दिखाई देता है तो मुझे देखने वाले यात्री अवाक रह जाते हैं। जो पहली बार मुझे कॉकपिट में देखता था वो यही सोचता था कि ये महिला वहां क्या कर रही है, क्योंकि मुझे कॉकपिट में देखने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन यात्रियों का ये अच्छा काम, ये अच्छा रवैया मेरे दिल की ताकत है, मेरे हौसलों को पंख देती है ताकि मैं अपना काम और अधिक दृढ़ता से जारी रखूं। श्रीमती दस्तजर्दी उस उड़ान के बारे में बताती हैं कि जब उनका परिवार पहली बार उस फ्लाइट में यात्रा कर रहा था कि जिसकी वो स्वयं पायलट थी। फहीमा अहमदी के अनुसार, पहली बार जब मेरा परिवार मेरे विमान में सवार हुआ, हम मशहद जा रहे थे। जब मैंने अपना परिचय दिया और अपने परिवार के बारे में बताया तो यात्रियों ने तालियां बजाकर मेरे परिवार का स्वागत किया। वहीं मेरी माँ की आंखों में निरंतर खुशी के आंसू गिर रहे थे। हालांकि मैं कॉकपिट में थी और अपनी माँ की इस स्थिति को नहीं देख पाई थी, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे बताया कि मेरी माँ लगातार रो रही थी और खुशी के आंसू बहा रही थी।
फहीमा दस्तजर्दी कहती हैं कि उस समय कि जब मैंने अपना परिचय दिया और अपने परिवार के बारे में बताया तो विमान में मौजूद सभी यात्री ऐसे खड़े होकर मेरी माँ की ओर देखकर तालियां बजा रहे थे कि जैसे मैं नहीं मेरी माँ जहाज उड़ा रही हैं। फ्लाइट के यात्रियों की आंखों में एक तरह का आभार था, जो वास्तव में दिल को छू लेना और सुकून पहुंचाने वाला क्षण था। इस समय एक महिला पायलट के रूप में फहीमा अहमदी दस्तजर्दी ने इस पेशे को केवल पुरुषों से जोड़कर देखने वालों की सोच को बदलने का हर संभव प्रयास किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने समाज में और अपने सहयोगियों के बीच जहां तक हो सके इस दृष्टिकोण को सही करने के लिए विमान उद्योग महिला समाज के नाम के साथ ईरान में एक अभियान चला रही हैं।
फहीमा अहमदी दस्तजर्दी कहती हैं कि मैं इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के कौशल और विशेषज्ञता पर पूरा विश्वास करती हूं। इस उद्देश्य के लिए मैं इस गैर सरकारी संगठन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में भी सभी कामकाजी और इच्छुक महिलाओं को आमंत्रित करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लोगों की जागरूकता और ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, विशेष रूप से जो इस उद्योग में काम कर रहे हैं और स्थापित मानदंडों के अनुसार उनमें से प्रत्येक के ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा करना है। इसके अलावा इस संगठन की सदस्य आमतौर पर हमारे देश के विमानन उद्योग की महिलाएं होंगी। कुल मिलाकर ये महिला पायलट अपने परिवार के एक एक सदस्य के सहयोग, सहचार और सहानुभूति से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी है और वो अपने माता पिता के प्रोत्साहन और अपनी बहन और दो भाइयों के सहचार को अपनी सफलता में योगदान देने वाले कारकों के रूप में मानती हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा और अब समय हो चुका है आज के मुख्य समाचारों के सारांश का। न्यूयॉर्क में ईरान की जबरदस्त कूटनीति, यहूदी धर्मगुरुओं से राष्ट्रपति की मुलाकात, ईरान और बहरीन के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात, अहम मुद्दों पर चर्चा, सऊदी अरब और सीरिया निकट भविष्य में राजदूतों का आदान प्रदान कर सकते हैं और भारत में जातिगत भेदभाव का मुद्दा फिर गर्माया, इस बार केरल के मंत्री हुए शिकार। तो दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा ये प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है farstoday.ir/hi। तो इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔